वचन। नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से इब्रानियों नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
यही समय है प्रभु से बातें करने का, यही समय है यीशु से विनती करने का, यही समय है आराधना स्तुति करने का, यही समय है यीशु से प्रार्थना करने का।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी अपने प्रियों के साथ कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बैठे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से इब्रानियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने अध्याय एक में प्रभु यीशु की महिमा की चर्चा सुनी थी और अध्याय दो में हम उसकी विनम्रता की चर्चा सुन रहे हैं। उसने एक स्त्री से जन्म लिया और इस कारण वह स्वर्गदूतों से कुछ कम हो गया। हम इस पुस्तक में यीशु के बारे में दो बातें देखते हैं। पहला, वह मनुष्य को परमेश्वर का दर्शन कराता है और दूसरा, परमेश्वर के समक्ष वह मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से आपके वचन का अध्ययन कर सकें। आज जब हम आपके वचन में से सुनना और सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि आपका हर एक वचन एक एक के जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए, उनके जीवन में आपकी आशीषों को पहुंचाने पाए। हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए भी है जो इस समय बीमार हैं, निराश और परेशान हैं। पिताजी, आप उन पर भी कृपा दृष्टि करें, उन्हें शांति दे, उन्हें चंगाई और छुटकारा दे। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे साथ में हैं, हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों से बातचीत कर रहे हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम इन दिनों बाइबल में से इब्रानियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। लेखक का कहना है कि हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए हम देखते हैं, क्योंकि उसने सबके लिए मृत्यु सही। क्या पवित्र आत्मा ने आपकी आंखें खोल दी है कि आप यीशु को निहार सकते हैं? हम यीशु को देखते हैं। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा था कि वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु को स्वर्गदूतों से कुछ कम किया गया था। यहां पर कुछ का अर्थ है उसका सांसारिक जीवन, अर्थात 33 वर्ष उसने क्रूस पर जान दी, और यही कारण है कि वह हमें पापों से मुक्ति दिला सकता है। मुक्ति का वही एकमात्र मार्ग है। यदि उसकी मृत्यु सामान्य रूप से होती तो वह आदर और महिमा नहीं पाता, परंतु क्योंकि उसने आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर जान दी, इसीलिए उसे महिमा और आदर का मुकुट मिला जो 2500 वर्ष पूर्व पहले नहीं था। यीशु या यहोवा दोनों के अर्थ एक ही हैं। उसने मानव रूप धारण किया, इसलिए उसे स्वर्ग में महिमा और आदर दिया गया। ऐसा नहीं था, उसने मृत्यु की पीड़ा सहन करके पूरा पूरा अनुभव किया कि मृत्यु कैसे होती है। उसने कड़वा कटोरा पिया, एक एक बूंद उसने पी। क्यों? केवल आपके और मेरे उद्धार के लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए। उसने परमेश्वर के अनुग्रह से यह काम किया कि परमेश्वर आज आप पर और मुझ पर अपनी अनुग्रह दिखाता है, या यूं कहें कि मुझ पर वह अनुग्रहकारी हो। यीशु के मनुष्यत्व का अर्थ यह नहीं कि महापुरुष था या एक शहीद था या वह एक आदर्श पुरुष था। यीशु के दीन होने के दो परिणाम हुए। पहला, प्रभु यीशु के मनुष्यत्व को महिमा और आदर मिला, और दूसरा, मनुष्य का उद्धार हुआ। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु अपने मनुष्यत्व को लेकर ही स्वर्ग चला गया और वह वहां महिमा से भरा हुआ बैठा है। ऐसी महिमा इससे पहले स्वर्ग में नहीं थी। उसी ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की थी और सब कुछ उसी के लिए था। यह जगत इसलिए है कि प्रभु यीशु इसका अस्तित्व चाहता है। उसके मन में तो पहले ही से जगत की रचना का विचार था। वह चाहता था कि जगत अस्तित्व में आए। आज परमेश्वर चाहता है कि बहुत से पुत्र महिमा में आएं, परंतु भविष्य में उसकी इच्छा है कि वह अपने राजा को सियोन के सिंहासन पर बैठाए। वह मानव जाति को बचाने आया था और उसने मनुष्य के उद्धार के काम को पूरा किया। उसने कष्ट उठाकर सिद्धता प्राप्त की। यद्यपि वह स्वयं परमेश्वर था, उसका सिद्ध जीवन हमारा उद्धार नहीं कर सकता था, न ही कुंवारी से जन्म लेने के द्वारा वह हमारा उद्धार कर पाता। वह क्रूस पर मरा जिसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। उसने मेरे लिए क्रूस पर जान दी। उसने संपूर्ण मानव जाति के लिए क्रूस पर जान दी। क्रूस पर अपनी जान देने के कारण वह सिद्ध हुआ। उसने प्रत्येक मनुष्य के स्थान पर मृत्यु का स्वाद चखा। मेरे मित्रों, आइए हम अब आगे बढ़ते हुए इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसके 18 पद को पढ़ें। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय और उसके 18 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। यहां पर ध्यान दें, उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया। यह उसकी 40 दिन की परीक्षा के संबंध में नहीं कहा गया है, वरन उसके संपूर्ण जीवन में आने वाली परीक्षाओं के बारे में कहा गया है। मेरे प्रियो, यीशु की परीक्षा के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है, क्या वह परीक्षा में पढ़ सकता था? जी नहीं। जब हम कहते हैं कि हम पर परीक्षा आती है तो इसका अर्थ है कि गलत काम करने का अवसर हमें मिलता है और हम गलत काम करते हैं। अवसर पाना परीक्षा है और अवसर का लाभ उठाना पाप है। पाप करने की लालसा भी पाप है। प्रभु यीशु में पाप की लालसा नहीं थी, वह पापी नहीं था, परंतु पाप करने के अवसर उसे मिले थे। मेरे मित्रों, यह देख कि वह 40 दिन से भूखा है, शैतान ने अवसर का लाभ उठाकर उससे कहा, इन पत्थरों को रोटी बना दे। वह कर सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसकी परीक्षा हमसे बड़ी थी। यदि मैं पत्थरों को रोटी बना सकता तो मैं बेकरी का व्यवसाय आरंभ कर देता। वह परीक्षा में नहीं गिरा। वह ऐसी लालसा नहीं कर सकता था क्योंकि वह परमेश्वर था। एक और प्रश्न है, क्या यीशु पाप कर सकता था? जी नहीं। तो फिर उसकी परीक्षाओं का उद्देश्य क्या था? इसके उत्तर में मैं एक बहुत ही अच्छा उदाहरण आपको देता हूं। जब मैं छोटा था, मेरे शहर में एक नदी थी जो गर्मियों में सूखी रहती थी और शरद ऋतु में उसमें बाढ़ आती थी। एक बार बाढ़ में वहां का रेल का पुल उखड़ गया। वह लकड़ी का था। कंपनी ने उसके स्थान पर लोहे का पुल बनवा दिया। अब कंपनी ने 2 इंजन लाकर उस पुल पर खड़े किए और उनकी सीटियां एक साथ जोड़कर बजाने लगे। इतनी ऊंची आवाज में लोगों ने सीटी कभी नहीं सुनी थी, इसलिए सब भागकर वहां पहुंचे। एक पुरुष ने इंजीनियर से पूछा, आप यह क्या कर रहे हैं? इंजीनियर ने उत्तर दिया, हम पुल का निरीक्षण कर रहे हैं। उसने फिर पूछा, तो क्या आपको संदेह है कि यह गिर जाएगा? इंजीनियर ने ठट्ठे से कहा, नहीं, यह नहीं गिरेगा। तो फिर आप यह क्यों कर रहे हैं? इंजीनियर ने उत्तर दिया, हम इन 2 इंजनों को खड़ा करके सिद्ध करना चाहते हैं कि यह नहीं गिरेगा। मेरे प्रियो, इसी प्रकार यीशु को परख कर देखा गया कि वह वही है जिसका वह दावा करता था। यह एक आश्चर्य और महत्वपूर्ण बात है। यदि यीशु पाप करता तो उससे यह सिद्ध नहीं होता कि देहधारी परमेश्वर पाप कर सकता है, परंतु यह सिद्ध होता है कि वह परमेश्वर नहीं है। उन परीक्षाओं से यही सिद्ध हुआ कि वह देहधारी परमेश्वर ही है। लेखक कहता है कि वह हमारे समान हर बात में परखा तो गया था, परंतु पाप रहित निकला। इसे हम इब्रानियों के पत्र 4 अध्याय उसके 15 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया था, इसलिए वह परीक्षा में पड़े हुए मनुष्यों की सहायता कर सकता है। हमारे आगे के अध्ययन में हम देखेंगे कि प्रभु यीशु महायाजक है। मित्रों, हम देखेंगे कि प्रभु यीशु परीक्षा में पड़े मनुष्यों की कैसे सहायता करता है। हो सकता है कि आप परीक्षा में पड़े हैं, लेकिन इस बात को जान लीजिए कि वह आपकी भी सहायता कर सकता है। मैं इस पुस्तक के अध्ययन में एक ही आशा रखता हूं कि हमें यह निश्चित बोध हो जाए कि हमारे पास एक महायाजक है। वह आज जीवित है, वह परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह हमारे लिए उपलब्ध है। रात में जब चिंता के कारण मैं सो नहीं पाता, तब मुझे यह ध्यान रखना है कि मेरा महायाजक स्वर्ग में है और मुझे देखता है, समझता है, इसलिए मैं अपने बोझ उसके पास ले जा सकता हूं। जब मौत की अंधकार भरी तराई से होकर चलते हैं, तब हमारा महायाजक जो स्वर्ग में है हमारी सहायता करता है। चाहे कुछ भी हो, कैसी भी परीक्षा हो, वह हमारी सहायता करने के लिए सामर्थी है। मुझे दुख है कि हम उस सेवा को नहीं लेते, हम उसे भूलकर स्वयं संघर्ष करने में लगे रहते हैं। मेरे मित्रों, वह आपकी सहायता के लिए तैयार है। वह तो चाहता है कि आप उसके पास आएं, लेकिन क्या आप उसके पास आने के लिए तैयार हैं? मेरे प्रियो, यहां पर अध्याय 2 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 3 से अध्ययन को जारी रखेंगे। इसका विषय है मसीह मूसा से बड़ा है। मेरे प्रियो, हमने देखा था कि यीशु भविष्यद्वक्ताओं से बड़ा है और अभी हमने देखा कि वह स्वर्गदूतों से भी बड़ा है। अब हम देखेंगे कि वह मूसा से भी बड़ा है। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। मेरे प्रियो, इस अध्याय का आरंभ इसलिए शब्द से होता है और यह एक और कारण है कि मैं पौलुस को इस पत्री का लेखक मानता हूं, क्योंकि पौलुस की यह शैली है कि वह किसी तर्क की बात को इसलिए से आरंभ करता है। इस पद में शब्द इसलिए का महत्व कहीं अधिक है, क्योंकि यहां इस शब्द का उपयोग दो मुखी रूप से किया गया है। इसलिए पहले कही गई बात को भी देखता है और आगे जो बात कही जाएगी उसको भी देखता है। इसलिए हे पवित्र भाइयों, यहां भी भाइयों का अभिप्राय है जो पौलुस के समान अन्य यहूदी भी हैं। पौलुस देह से यहूदी था, इसलिए वह पाठकों को जो यहूदी थे अपने भाई कहता है, उन्हें वह पवित्र भाई कहता है। यहां पवित्र का अर्थ उनके कर्मों के कारण पवित्र होने से नहीं है, पवित्र का अर्थ है अलग किए गए लोग। वे परमेश्वर के लिए अलग किए गए थे, वे उसकी प्रजा हैं। तब हम पढ़ते हैं, जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। इसराइल को सांसारिक बुलाहट थी। पुराने नियम में इसराइल को जितनी भी प्रतिज्ञाएं दी गई थी, वे सब सांसारिक आशीषों की प्रतिज्ञाएं थी। परमेश्वर ने उन्हें समय पर वर्षा, उपजाऊ भूमि, विपुल पैदावार आदि की प्रतिज्ञा दी थी, परंतु इसके साथ ही उसने उन्हें आत्मिक आशीषों की प्रतिज्ञा भी दी थी। आज का यह विचार कि भौतिक आशीष को आत्मिक क्षेत्र में काम में नहीं लिया जाता है, यह गलत है। इस कारण विश्वासी पैसे से दूर भागते हैं। पैसे में क्या बुराई है? पैसा आत्मिक क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है। यह बड़ी विचित्र बात है कि किसी बात के लिए प्रार्थना करें और फिर उसे पैसों से सहयोग ना दें। उदाहरण के लिए, आप किसी परमेश्वर के सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं, तो मेरा सुझाव है कि आप उसे पैसों से भी सहयोग दें कि आपकी प्रार्थना प्रभावी हो। दान देना आत्मिक है। यह याजक की सेवाओं में से एक है। वह आत्मिक भेंट चढ़ाता है, जिसमें दान देना भी एक भेंट है और होठों से स्तुति करना भी एक भेंट है। मेरे प्रियो, ये भाई जो स्वर्गीय बुलाहट के भागी थे, उन्हें इससे पूर्व सांसारिक बुलाहट थी। अब वे इसराइल की, वह पीढ़ी थे जो प्रभु यीशु को ग्रहण कर चुकी थी। पत्री का लेखक स्पष्ट करेगा कि अब वे एक अलग युग में हैं। पहले वे मूसा की व्यवस्था के अनुसार पशु बलि चढ़ाते थे जो उचित था, अब पशु बलि उचित नहीं थी क्योंकि बलिदान आदि सब प्रभु यीशु में पूरे हो चुके थे और अब उन्हें स्वर्गीय बुलाहट थी। सांसारिक बुलाहट समाप्त नहीं हुई है, वह केवल स्वर्गीय बुलाहट में बदल गई है। अतः वे स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो गए हैं। आज इसराइल में सेवा कर रहे अनेक सेवक इस बात को स्पष्ट करते हैं। एक यहूदी को गवाही देते समय हम उसे ऐसा संकेत देते हैं कि जैसे उसे यहूदीवाद से मुक्ति पाना होगा। पता नहीं क्यों ऐसा किया जाता है। यहूदी भी प्रभु यीशु को ग्रहण कर सकता है। जी हाँ, हम परमेश्वर की संतान होकर भी भारतीय ही रहेंगे। हमें अपनी नागरिकता बदलने की आवश्यकता नहीं है। अतः उन यहूदियों ने प्रभु यीशु को ग्रहण करके स्वर्गीय बुलाहट में भागीदारी कर ली थी। यह एक महत्वपूर्ण बात है। यदि आप इस पत्री के पाठकों पर ध्यान न दें तो यह पत्री अर्थहीन हो जाती है। यह भी देखना होगा कि यह कब लिखी गई थी। जॉन वाइक्लिफ एक महान प्रचारक थे। उन्होंने कुछ स्वर्ण नियम बनाए थे कि बाइबल के अनुवाद में क्या ध्यान रखना चाहिए, और मेरे विचार में वे आज भी सोना ही है। उनके स्वर्ण नियमों को सुने। यदि आप कही गई और लिखी गई बातों ही पर ध्यान न देकर किसने किससे कहा, क्या शब्द काम में लिए, किस समय और कहां और किस अभिप्राय से कहे, कौन सी परिस्थितियों में कहे, और ध्यान दें कि पहले क्या हुआ था और आगे क्या हो रहा है, तो आपको धर्मशास्त्र की बात समझने में बहुत सहायता मिलेगी। मेरे मित्रों, यदि हम इब्रानियों की पत्री के अध्ययन में इन नियमों का पालन करें तो हमें लेखक की बातों को समझने में कठिनाई नहीं होगी। स्वर्गीय बुलाहट के सहभागी हमारे लिए पूरी तरह अर्थहीन होगा यदि हम इसे यहूदी पाठकों से जोड़कर ना रखें या ना देखें। आगे लिखा है, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। यहां ध्यान करो लेखक का अभिप्राय है, समय देकर पूरी तरह बुद्धि से ग्रहण करो। यह एक अति महत्वपूर्ण शब्द है और हमें समझना है कि हमें सावधानी पूर्वक गंभीरता से इस पर पूरा पूरा विचार करना है। प्रेरित, प्रभु यीशु सच्चा प्रेरित था। प्रेरित कौन होता है? प्रेरित वह व्यक्ति है जिसे भेजा गया है। यीशु को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा था। वह परमेश्वर का संदेश वाहक था, परमेश्वर का प्रकाशन था। परंतु यह भी देखें, लिखा है, उस प्रेरित और महायाजक पर ध्यान करो। उसकी याजकीय सेवा इस पत्री का विषय है। इस समय तो लेखक इसकी कम चर्चा करता है, परंतु जब वह लौटकर इस विषय पर आता है तब वह केवल इसी विषय पर चर्चा करेगा। अतः हमें अध्याय 5 की प्रतीक्षा करनी होगी। महायाजक प्रेरित की विपरीत दिशा में चलता है। प्रेरित भविष्यद्वक्ता के समान परमेश्वर की ओर से मनुष्य के लिए संदेश लाता है, परंतु महायाजक विपरीत दिशा में मनुष्य की ओर से परमेश्वर के पास विनती लेकर के जाता है। मेरे मित्रों, यीशु हमारा महायाजक है। यहां यीशु कहकर उसके मनुष्यत्व को महत्व दिया गया है। मैं फिर कहता हूं कि स्वर्ग में एक महिमामय मनुष्य है जो वहां हमारा प्रतिनिधित्व करता है। मैं बहुत खुश हूं कि वह वहां है, क्योंकि कहा गया है कि वह हमारा मध्यस्थ है, वह हमारे पक्ष में विनती करता है। कभी कभी किसी से बात करते समय मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे अपनी बात समझा नहीं पा रहा हूं। उदाहरण के लिए, जब डॉक्टर ने मुझे मेरे चर्म रोग की बीमारी के बारे में बताया तो मेरे मन में जो भावना उत्पन्न हुई उसे मैं दर्शकों को सुना रहा था। जब मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी बात श्रोताओं को समझा नहीं पा रहा था, परंतु मुझे शांति इस बात की हुई है कि मेरी बात को समझने वाला कोई है। यीशु समझता है कि मेरी भावनाएं कैसी थी। प्रभु यीशु समझता है कि आपकी भावनाएं कैसी हैं। मेरे मित्रों, इस बात पर गंभीरता से विचार करके ध्यान करें। हमारे पास परमेश्वर का भेजा प्रेरित है। वह हमारा महायाजक है जो परमेश्वर की उपस्थिति में लौट गया है और आपकी और मेरी मध्यस्थता करता है। यह एक महान पद है। मसीह मूसा से बड़ा है। अब लेखक प्रभु यीशु को मूसा से भी बड़ा बताना चाहता है। उसने प्रभु यीशु को भविष्यद्वक्ताओं से और स्वर्गदूतों से बड़ा बताया है, क्योंकि मूसा यहूदियों के लिए सबसे बड़ा परमेश्वर का जन था। कुछ समय पहले की बात है, इसराइल के गुरुओं ने एक विवाद का आयोजन किया। उसका विषय था, कौन बड़ा है, मूसा या अब्राहम। मेरे विचार में उनका निष्कर्ष था कि मूसा अब्राहम से बड़ा है। यदि ऐसा है तो प्रभु यीशु मूसा से भी बड़ा है, और इब्रानियों की पत्री का लेखक यह सिद्ध करके हमें दिखाएगा। मेरे मित्रों, यहां पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु को भेजा जो मूसा से भी बड़ा है। इतना ही नहीं, वह मेरे लिए और आपके लिए महायाजक का काम करता है, मध्यस्थता का काम करता है। हमारी सहायता करने के लिए वह हमेशा तत्पर है। मेरे प्रियो, यदि इस समय आप अपने जीवन में किसी समस्याओं में से होकर के जा रहे हैं, आप निराश हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, या किसी ऐसी परिस्थिति में हैं जिसका कोई हल नहीं, इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु आपकी बातों को समझता है, आपकी समस्याओं को जानता है, और वह आपकी सहायता कर सकता है। यदि आज आप उससे पुकारें तो वह आपकी अवश्य ही सहायता करेगा। यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मुझे आशा है कि आप उसे अवश्य ही पुकारेंगे। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। एक बार फिर से नोट कर लें, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
राजाओं का राजा।